विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्वोत्र श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्रीनाथ जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी All glories to the Seven Devotees. All glories to the Seven Devotees. All glories to the Seven Devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga Charya Srila Prabhupada.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यां धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरंग जायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्षतु चैद्ययारात् गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदा ग्रजयेत्यपाणिम् गृह्णातु मे न दमघोष सुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रीतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तः पुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवि यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्यां घृपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्तु मा पतिरिवात्मतमोपहत्यै <स्थ-> जर्ह्यम्बुजाक्षन लभेय भवत् प्रसादम् जह्यामसुन् व्रतकृशात् शतजन्मभिः स्यात्
ईरापतिम् कुलवते न गणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्
सन्मे भवान् खलु मृतपतिरङ्ग जायाम् आत्मा पिताश्च भवता त्व विभो विदेहि भागममिव सूचयद्यात् गोमायुवन्गपते बलिम् अम्बुजत्सा भूतेश्वरत्र नियमावृत देव विप्र पूर्वर्चनादि विरलम् भगवान् परेश आराधितो यदि गदा गज इत्य पाणिम् आराधितो यदि तुमेन क्रमघोष सुतादयोस्ते
चैत्यमगधेन्द्र बलम् प्रसाद्य संरक्षसेन विदिनो दुहवार्यस्तु सुताम्
पङ्कज रज स्नपनम् महान्तो पञ्चाति उमपति दिवात्मतमो पहतै यहि अम्बुजाक्षन लभेय भवत्प्रसादम्
कुलशील रूप
तात अतः इस कारण से मैं मेरे द्वारा भवान आप खलु इच्छितम् वृतः वरण किए गए हैं पति ही पति अंग हे प्रियतम जायाम मुझ जाया को पत्नी को आत्मा देह मन सब कुछ अर्पितः अर्पित है च और भवतो आपके लिए अत्र इस विषय में विभो हे सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ विधेहि बनाइए इसका संबंध जाया से है मुझे जाया स्वीकार कीजिए माँ नहीं वीर भागम आप जैसे वीर की पत्नी को अभिमर्शतु स्पर्श करे माँ क्रिया से माँ से इसका संबंध है न स्पर्श करे चैद्यः चेदि देश का राजा शिशुपाल आरात शीघ्रम गोमायुवत श्रीगाल की तरह मृगपते है मृगराज सिंह के बलिम भाग को अम्बुजाक्ष हे कमल नयन तो श्री रुक्मिणी जी भगवान के पास पत्र लिखी हैं ब्राह्मण उस पत्र को पढ़ रहे हैं दो श्लोकों की थोड़ी सी व्याख्या कल की गई थी अब तीसरा श्लोक आज प्रारंभ कर रहे हैं इसके पहले रुक्मिणी जी ने कहा था दूसरे श्लोक में कि हे मुकुंद कुल शील रूप विद्या जवानी धन प्रभाव आदि में आप अपने ही समान है, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। तो कौन ऐसी कुलवती धैर्यवती और महान गुणवती कन्या होगी जो विवाह के अवसर पर आपको ही अपने पति के रूप में न चुने। अतः मैंने जो आपको अपने पति वरण किया है यह बिल्कुल उचित किया है। आप में तो मनुष्य मात्र का मन रम जाता है, नरलोक मनोभिरामम। आप इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं कि स्त्रियों की तो बात दूर रही, मनुष्य मात्र का मन आप में रम जाता है, सभी आपको पसंद करते हैं। तो मैंने जो आपको पसंद किया है अपने पति के रूप में यह बिल्कुल युक्त है, उचित है, यह मेरी धृष्टता नहीं। अतः तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। तत् तस्मात् अतः हे प्रियतम, मैंने आपको अपने पति के रूप में वरण किया है, यह सुनिश्चित बात। मैंने आपको अपना पति बनाया है, वरण कर लिया है, और आत्मा अर्पितश्च, और मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर दिया। आत्मा अर्पितश्च, या आत्मा शब्द से तात्पर्य है देह मन और जीवात्मा, जो भी मैं हूं या मेरा जो कुछ भी है मैंने आपको समर्पण कर दिया है। अतः अत्र इस विषय में हे विभो, हे सर्वसमर्थ और हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को आप जानते हैं, हमारी स्थिति को, और आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। अतः हे प्रियतम, आप हमें अपनी जाया के रूप में स्वीकार कीजिए। जाया का अर्थ है पत्नी, अपनी पत्नी के रूप में, जाया के रूप में हमें स्वीकार कीजिए। और यदि मान लीजिए भगवान कहें कि यदि नहीं स्वीकार करूंगा तब, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में चेदी राज शिशुपाल शीघ्र ही और निकट से आकर के मेरा स्पर्श न करे, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। इसका अर्थ है कि विवाह के लग्न के बहुत पहले आपको आ जाना चाहिए। कहीं निकट से शिशुपाल है न अभिमर्शतु, मेरा अभिमर्शन न करे, स्पर्श न करे। यहाँ अभिमर्शन से तात्पर्य है कि पाणी ग्रहण वो न करे। ऐसे समय नहीं आना चाहिए कि मुझे बलात् मेरे परिजन, मेरे स्वजन कहें कि तुम शिशुपाल का हाथ पकड़ो, पाणी ग्रहण करो। मैं ऐसा करूंगी नहीं, कभी नहीं कर सकती हूँ। आगे वो कहती है मैं मर जाऊंगी, सैकड़ों बार जन्म लूंगी, हजारों बार दूसरा शरीर प्राप्त करके फिर मरूंगी, लेकिन जब भी बनूंगी तो आपकी दासी बनूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी, अन्य किसी की नहीं। यह मेरा निर्णय है और मैंने अपना देह आपको अर्पित कर दिया। तो माँ वीर भागम अभिमर्शत चैद्य आरा गोमाई वन मृगपतेर बलिमम बुजाक्ष। हे कमल नयन, हे अम्बुज नयन, कहीं शिशुपाल निकट से आकर के मेरा हाथ न पकड़ ले, छू न दे, अन्यथा ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कृपा कीजिए। तो इस तरह से रुक्मिणी जी दोनों बातों को स्पष्ट कर रही हैं, मुझे अन्य किसी से विवाह नहीं करना है, आपसे ही करना है, और शिशुपाल की तुलना श्रीगाल से कर रही है रुक्मिणी। गोमायु, गोमायु का अर्थ होता है सियार, तो मैं वीर भाग हूँ, वीर मतलब तव वीरस्य भागम पत्नी नीति अर्थ, मैं आपकी हो चुकी हूँ, मैंने समर्पण कर दिया है, तो आपके भाग को दूसरा कोई न छुए, जैसे शिशुपाल, मैं आपकी हो चुकी हूँ, आपकी पत्नी हो चुकी हूँ, इसलिए मेरा हाथ वह न पकड़े, मेरा पाणी ग्रहण न करे। अभिमर्शतु से तत्पर, जैसे मैं पहले कहा, आकर के उंगली तक न छू दे, ऐसा होने पर मैं जीवित नहीं रह सकती, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा देह शिशुपाल छुए। विवाह निश्चित हो चुका था, विवाह की बहुत बड़ी तैयारी हो गई थी, रुक्मिणी जी यह पत्र लिख रही हैं, विवाह के दो दिन पहले, मतलब परसों विवाह होने वाला है, तो आज लिख रही हैं ये। अथवा जो भी हो, ब्राह्मण के आने में देर हुई होगी तो पहले लिख करके दी होगी, ब्राह्मण पहुंचे होंगे आज, और परसों विवाह होने वाला। पत्र में लिखा गया स्व भाविनी, स्व का अर्थ होता है कल, और स्व भाविनी का अर्थ कल के बाद वाले दिन में, कल के बाद वाले दिन विवाह होने वाला है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, रुक्मिणी जी कह रही है, कमल नयन हे परम सुंदर, आपकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं, इसका अर्थ है कि आप सब अंगों में सब तरह से असमोर्ध सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, आप हमको अपनी पत्नी बनाइए, अपनी जाया स्वीकार कीजिए, चेदीराज शिशुपाल मेरा स्पर्श न करे, जैसे सिंह के भाग को मृगपते बलिम, मृगपति के सिंह के भाग को गोमायु न स्पर्श करे। तो इस तरह से अपने सर्वांग सुंदर देह को और अपने मन को, अपने इंद्रियों को रुक्मिणी जी भगवान के योग्य समझ रहे हैं। इस तरह का भाव होना चाहिए किसी साधक में, मेरा यह देह या मेरी वाणी, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, जो कुछ भी कृष्ण के लिए है, मैं इसका उपयोग दूसरे के लिए नहीं कर सकता, जो कुछ वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है। तो जीव तो अनादि काल से इन इंद्रियों का प्रयोग दूसरे की सेवा में कर रहा है या अपनी तृप्ति में कर रहा है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के अधिपति हैं, और उन्होंने ही इंद्रिय दिया है। तो इंद्रियों के द्वारा जब ऋषिकेश का, इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण का सेवन किया जाता है, तो यही जीव की सच्ची स्थिति है, सही सुखमय पोजीशन है जीव का। तो रुक्मिणी जी के जीवन में तो कोई साधक और साधना की बात नहीं है, वो तो भगवत राज्य की बात है, और रुक्मिणी जी के चित्त की ऊंचाई को, पवित्रता को, और उनके सहज समर्पण को समझ पाना कठिन है, जो तो भगवान समझते हैं रुक्मिणी के भाव को, और भगवान के स्वभाव को रुक्मिणी जी जानती हैं। तो इस तरह से अपने शरीर के तरफ देख कर कहते हैं रुक्मिणी जी कि मैं अपने देह को अर्पित कर चुकी हूँ आपके लिए, तो आपको जो देह अर्पित है उस देह को शिशुपाल न छुए, यह आपके चरणों में प्रार्थना है। और आगे के श्लोक में कहती हैं, पुरतेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान परेशः आराधितो यदि गदा ग्रजयेत्य पाणिम् गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयन्ये। अनेक जन्मों में किए गए सुकृत को अर्पित कर रही हैं। रुक्मिणी जी के मन में यह शंका उठ रही है कि श्री कृष्ण प्रियतम भगवान पूछ सकते हैं कि तुम में क्या गुण है कि मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊं। पहले जब वो कह चुके हैं कि कुल सिल रूप विद्या वै द्रविण धाम में आप अपने समान हैं, तो यह एक बहुत बड़ा साहस हुआ ना किसी कन्या के लिए कि वह भगवान को अपने पति के रूप में वरण करे। क्या तुम्हारी योग्यता है? रुक्मिणी जी अतिशय दैन्य में कह रही हैं, मेरे पास कोई भी गुण नहीं है सौंदर्य में और किसी भी वस्तु में मैं आपके समान कभी भी नहीं हूं, लेकिन यदि मुझे याद नहीं है परंतु यदि पिछले जन्मों में मैंने शुभ कर्म किया हो कुछ है, तो उस कर्म के शुभ कर्म के पुण्य के प्रभाव से आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार करें। यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यदि भगवान विष्णु हमारी पूजा से हमारी आराधना से हमारे शुभ कर्मों से यदि प्रसन्न हो, तो मैं यही वर मांगती हूँ भगवान से, आपसे। वो समझ रहे हैं कि यही भगवान यही परम ईश्वर हैं जिनकी आराधना मैंने किया होगा। यदि शब्द लगा रहे हैं, यदि मैंने शुभ कर्मों द्वारा भगवान की ही आराधना की है, तो उस पुण्य के उस भक्ति के प्रभाव से गद के अग्रज श्री कृष्ण हमारा पाणी ग्रहण करें। तो जितना भी यदि मैंने सुकृत किया हो, यदि शब्द से यह करें कि मैं नहीं कह सकती कि मैंने किया है, लेकिन कुछ अनुमान करती हूं कि मैंने सुकृत किया है, क्योंकि इस प्रकार से आपका संवाद मेरे कानों में गिरना और मेरे मन में इस तरह की वृत्ति का उदय होना कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, यह बिना पुण्य के बिना पूर्व भक्ति के संभव नहीं है। तो इस अनुमान से कह रहे हैं कि अवश्य मैंने कुछ आराधना किया होगा भगवान, मैं आराधना की होगी। तो कौन कौन कर्मों द्वारा भगवान को प्रसन्न किया होगा? पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलम् पूर्त। यदि मैंने पूर्व जन्मों में कुछ पूर्त कर्म किया है, तो उस पुण्य के प्रभाव से गद के अग्रज श्री कृष्ण मेरा पाणी ग्रहण करें। पूर्त कर्म का अर्थ होता है कुआं खुदवाना या सरोवर बनवाना, वृक्ष लगाना, इसे पूर्त कर्म कहे जाते हैं शास्त्रों में। ये सब कर्म जीव को बहुत एलिवेट करते हैं, उसकी चेतना को ऊंचा बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पैसा लगा करके और दूसरे जीवों के हित के लिए कुआं खुदवा रहा है, जल की व्यवस्था करता है या तड़ाग सरोवर आदि बनाता है, या दूसरे की भूख बुझाने के लिए छाया देने के लिए वृक्षारोपण आदि करता है, यह पुण्य कर्म है। यदि मैंने पूर्व जन्मों में पूर्त कर्म किया हो और उन कर्मों के द्वारा यदि मैंने केवल यही मांगा हो कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो उसके प्रभाव से श्री कृष्ण आकर के मेरा पाणी ग्रहण करें। अंत में व्यक्ति अपने पुण्य को ही दांव पर लगाता है, यही सामान्य विधि है। किसी संकट के समय व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान, हे देवता, यदि हमने कुछ भी अच्छा कर्म किया हो तो उस अच्छे कर्म के फल से यह काम हो जाए। रुक्मिणी जी के जीवन में अब इससे बड़ा कार्य कोई दूसरा था नहीं। एक विवाह के योग्य कन्या के लिए पति मिलना, ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु भगवान को पति के रूप में पाने की जो लालसा है, तो इससे बढ़ करके तो जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता, लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ भी हमने किया है उसका फल यह हो कि गद के अग्रज श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। तो उसने पूर्त कर्म पहले कह रही, सदा से इन कर्मों का बहुत महत्व रहा है। दूसरे के हित के लिए कुआं खुदवाना या सरोवर बनवाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इधर तो कुआं और सरोवर का शायद कोई खास महत्व है नहीं, सबके घर में पानी आ रहा है और बाहर कोई पशु घूम नहीं रहा है पानी पिए। लेकिन भारतवर्ष में जो जंगली हैं वहाँ की स्थिति देखे हैं, ये शहर समझ सकते हैं कि कुप है और सरोवर वाटिका बगीचा आदि की कितनी आवश्यकता होती है। यदि कोई भी वृक्ष है छाया वाला तो आप गर्मी के दिन में देखेंगे कि वहां 10-5 आदमी विश्राम कर रहे हैं उस छाया में। जिस व्यक्ति ने उस वृक्ष का रोपण किया, बढ़ाया, रक्षा किया, क्यों नहीं उसको बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। तो दूसरों को आराम दे रहा है वृक्ष लगा करके और फल खा रहे हैं पक्षी मनुष्य पशु, तो उसका बहुत बड़ा कंसिडरेशन है भगवान की दृष्टि में। इसको यह हम कह करके नहीं हल्का कर सकते हैं कि यह सब पुण्य है बाधक है, ऐसा कह करके इसके महत्व को हल्का नहीं किया जा सकता। तो श्री रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि यदि मैंने पूर्व जन्म में पूर्त कर्म किया हो और उस पूर्त कर्म के द्वारा भगवान की आराधना की हो तो श्री कृष्ण मेरा पाणी ग्रहण कर। और इष्ट कर्म पूर्तेष्ट, इष्ट का अर्थ होता है यज्ञ करना। यदि मैंने पूर्व जन्मों में देवताओं की आराधना की है, हवन किया है, हवन के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया है, और दत्त पूर्तेष्ट दत्त, यदि मैंने पूर्व जन्मों में सुवर्ण आदि का दान किया है योग्य पात्र को, यहाँ तात्पर्य है यदि मैंने ब्राह्मणों को दान किया है, निष्किंचन ब्राह्मणों को यदि मैंने दान किया है और गरीबों को यदि मैंने दान दिया हो, तथा नियम वेद के नियमों का यदि मैंने पालन किया हो पूर्व जन्म में, व्रत किया हो एकादशी व्रत आदि, और देवताओं की आराधना की हो की है, ब्राह्मणों की पूजा की है, गुरुजनों की अर्चना की है, इन सब क्रियाओं के द्वारा यदि भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, परेश पराणाम ईश ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर भगवान यदि मेरी क्रियाओं से प्रसन्न हैं, तो गदाग्रज आकर मेरा पाणी ग्रहण करें, दमघोष के पुत्र आदि अन्य कोई भी मेरा पाणी ग्रहण न करें। न तो दमघोष सुता दयन्य, दमघोष सूत शिशुपाल को कहा, दमघोष के पुत्र या अन्य कोई भी दूसरा कोई भी मेरा पाणी ग्रहण न करे, श्री कृष्ण मेरा पाणी ग्रहण करें। तो जितने भी शुभ कर्म संभव हो सकते हैं सबको रुक्मिणी जी ने शर्त पर रख दिया। और प्रकारांतर से भी ये कह रही है कि मैंने तो इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, यदि शब्द इस बात को कह रहा है, अथवा यदि भगवान परेश आराधित यहां जोड़ सकते हैं, हमारे इन क्रियाओं के द्वारा शुभ कर्मों के द्वारा यदि भगवान हम पर प्रसन्न है, अथवा यदि हमने इन सब क्रियाओं को किया है और उन क्रियाओं के द्वारा यदि भगवान प्रसन्न है, तो इन शुभ कर्मों के कारण प्रसन्न भगवान ऐसी व्यवस्था करें कि श्री कृष्ण यहां आकर के इत्य का अर्थ आकर के मैं पाणी ग्रहणातु मेरा पाणी ग्रहण करे। तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह जो शुभ कर्मों का कोष है स्टॉक है, वही उसके बाद के जन्म के लिए सुखकर माना गया है। जैसे आज के युग में है कि किसी के पास अगर पैसा है, डॉलर है, रुपया पैसा है, तो उसे बहुत बहुत सामान खरीदता है, घर बांधता है, यात्रा करता है, सुख से जीवन जीता है, देखा जा रहा है। तो यह तो रुपया पैसा वास्तव में कहां तक सुख देगा, केवल इस जीवन तक। अब इसके बाद ये डॉलर स्वर्ग में नहीं चलेगा, एक्सचेंज भी नहीं है, ऐसा नहीं इसको बदल करके वो दूसरी करेंसी लेकर के काम करेंगे, यही तक काम करना है, लेकर जा ही नहीं सकते, एक्सचेंज आदि की तो बात ही दूर है। आदमी मरता है तो हाथ पसार करके मरता है, ऐसा सुना गया है कि जब जन्म लेते हैं हम लोग तो मुट्ठी बांध करके ऐसे जन्म लेते हैं, आते हैं और जाते हैं तो उसमें हाथ खुला रहा हो जाता है। ये स्वाभाविक व्यवस्था है ईश्वर की। अलेक्जेंडर के बारे में, सिकंदर के विषय में कहा गया है कि इकट्ठे गर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सारे दुनिया का लूटा हुआ धन वहां था और भिन्न भिन्न देशों के अधिपति वहां थे, सब घेरे हुए थे। और सिकंदर ने ऐसा कहा था कि मैं जितना भी धन कमाया हूं उसको मरते समय मेरे रूम में सब जमा कर देना और कफन बांधना तो मेरे हाथ को बाहर कर देना, हाथ को कफन के भीतर मत रखना। सिकंदर दिखाना चाहता था कि देखो कोई कुछ भी कमाए लेकिन अंत में एक पैसा भी लेकर के जा नहीं सकता है, सब यहीं पड़ा रह जाता है। योजना पूर्वक उसने ये व्यवस्था किया था। तो इस तरह से उस भवन में सब कुछ था, हीरा सोना चांदी वगैरह सब भरा हुआ, लेकिन सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे। वह एक विश्व विजेता माना जाता है, बहुत दुनिया को लूटा था, इकट्ठा किया था, राजाओं को बस में किया था, भारत वर्ष में आकर के उसे घुटने टेकना पड़ा था, वहां वो हार गया। ये हम लोगों का देश ऐसे वीरों की भूमि है। तो वह है सिकंदर जब गया उसके पास कुछ भी नहीं था, वो व्यवस्था कर सकता था कि कुछ न कुछ ले जाता कहीं, लेकिन कोई बुद्धि नहीं, कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो यहाँ का जो फैसिलिटी है, जो घर है, चाहे कितना भी अच्छा घर हो या स्वजन अथवा धन, रुपया पैसा सोना चांदी, सब यहाँ के लिए, और यहाँ भी जीवन भर काम नहीं आता है। अति वृद्ध हो जाने पर अपना कमाया हुआ धन ही लड़के नहीं खर्च करने देते हैं, नहीं अब तो मरने का समय, क्या खा पी कर करोगे, वो ऐसा कहते हैं सही में, और लड़के मनाने लगते हैं कि जल्दी चला जाए। वही बेचारा घर बनाया है, वही घर बनाया है, सब कुछ कमाया है, लेकिन बच्चे लड़के कहने लगते हैं अपने संबंधियों से कि अब तो राम जी सुन लेते इनकी तो अच्छा होता, मतलब अब ले जाते तो अच्छा होता, इनको बड़ा दुख हो रहा है। अरे दुख तो तुमको हो रहा है, घर गंदा हो रहा है, लेकिन कहते इनको दुख हो रहा है इसलिए अब चले जाते तो अच्छा हो जाता। चले जाते ऐसा नहीं कुछ ले करके जाए, ये शरीर भी छोड़ करके जाए, शरीर भी यही छूट जाता है। तो जैसे रुपया पैसा काम करता है लेकिन केवल इसी जन्म तक, और वो भी कुछ ही समय तक काम करता है, तो इसी तरह से मनुष्य के पास शुभ कर्मों का स्टॉक होता है, शुभ कर्म, जैसे कर्म गिनाए गए पूर्त इष्ट दत्त नियम व्रत गुरुवर्चन इत्यादि, ये सब मनुष्य के जन्म जन्म में साथ जाते हैं, जहां जाएगा वो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम भारतवर्ष से चले हैं तो वह जिस मंदिर में हम रहते हैं, रूम में रहते हैं, रूम तो वहीं छूट गया, यहां तो आया नहीं, लेकिन ये पासपोर्ट और वीसा साथ में चल रहा है। ये देखते हैं लोग, देखते हैं पूर्ण समझे, चाहे जो ही पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए कह रहा हूँ। कुछ चीज ऐसे जो साथ में चलता है, देश छूट गया, घर छूट गया, वहां के स्वजन छूट गए, आया दूसरे देश में, लेकिन कुछ कर्म फल वो साथ में है, वो है पासपोर्ट वीसा, उसके बिना एक इंच हम इधर उधर जा ही नहीं सकते। दूसरे प्लेन में बोर्डिंग करने में वो बिना पासपोर्ट के चढ़ ही नहीं सकते। तो इस तरह से जो पुण्य है अथवा पाप है वो मनुष्य के साथ जाते हैं, सदा साथ जाते हैं, और जन्म जन्म में उसकी सहायता करते हैं। तो श्री रुक्मिणी जी यह कह रहे हैं कि यदि मैंने पूर्व जन्मों में ये सब किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से श्री कृष्ण आकर के मेरा पाणी ग्रहण करें। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह जरूरी है सोचना है कि हमारा ये स्टॉक कितना है या नहीं है। और व्यक्ति यदि बिना पुण्य के कुछ मनोरथ करता है तो उसका मनोरथ विफल होता रहता है, वो सफल नहीं हो सकता। जैसे बिना पैसा के कोई व्यक्ति मनोरथ करता रहे आज जैसे व्हाट टू डू टुडे, आज ये करना है, आज जा करके माल से गोदाम से स्टोर से ये खरीदना है, ये करना है, वो करना है, और पैसा एक भी है ही नहीं, तो उसका लिखना सोचना सब विफल रहेगा, उसमें कोई दम नहीं। यदि पुण्य नहीं है, शुभ कर्म नहीं है, भगवान की भक्ति पहले नहीं किया है, तो उस व्यक्ति का मनोरथ सफल नहीं होता है, केवल मनोरथ उठते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है, विशेष करके जो साधक है, जो भवसागर के पार जाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि शुभ कर्म करते रहें। यदि शुभ कर्म करने के लिए नहीं, परंतु उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति में अभिनिवेश होता है अच्छा कर्म करने से, इसलिए उन कर्मों को करते जाना चाहिए। पहले के लोग कुछ वृक्ष लगा दिए हैं तो हम लोग फल खाते हैं, छाया में रहते हैं, घर बना दिए हैं, ये सरोवर बना दिए हैं। तो सरोवर बनाने की बात हो रही थी तो एक व्यक्ति कहता है मैं अकेले नहीं बनाना चाहता हूँ, नहीं तो इतना पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो भगवान हमको इंद्र बना देंगे, मैं इंद्र बनने नहीं चाहता, मैं ब्रह्मा बनने नहीं चाहता, इसलिए और लोग इसमें पुण्य कमाए, मैं अकेले इतना पुण्य नहीं कमाना चाहता। तो बहुत अच्छा शब्द था कोई इंद्र नहीं बनना चाहता। ऐसे जैसे व्यक्त कर रहा था कि यह पुण्य करना एक बहुत बड़ा बाधक है, इंद्र हो जाएंगे तो वैकुंठ जा नहीं पाएंगे, केवल इसी जगत में मैनेजमेंट में फंस करके रह जाएंगे। तो हमने सोचा कि इतना ज्यादा पुण्य हो गया कि बहुत बंधन हो जाएगा। तो यह भी बात है, वास्तव में ये शुभ अशुभ कर्म बाधक है भगवान के भक्ति में, भजन में। परंतु गीता में भगवान कहते हैं जेषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम देहव्रत। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो लोग बहुत पवित्र कर्म करते हैं, पुण्य कर्म से तत्पर्य भक्ति ही है, परंतु इन कर्मों को भी पुण्य कर्म माना जाता है। तो जो लोग पुण्यकर्मी है, पुण्य कर्म करते रहते हैं और जिनका पाप पूरा पूरा क्षीण हो जाता है, वही लोग दृढ़ भजन करते हैं मेरा, उनकी मति दृढ़ता से मुझ में लग जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश है कि यदि हम भगवान का प्रसाद चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं अपने स्वजन के रूप में, उनको उनके चरण कमल को पाना चाहते हैं, तो पुरतेश दत्त नियम व्रत गुरुवर्चनालम, इन सब क्रियाओं को अपनी शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। यह बात जरूर है कि प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति नहीं है इन क्रियाओं को करने की, लेकिन जितनी भी शक्ति हो करते जाना चाहिए। उससे परिवार का हित होता है, व्यक्ति का हित होता है, और समाज का जो कल्याण होता है वो तो होता ही है। परिवार में भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े विपत्ति आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, तो पूर्ण से टल जाते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पूर्ण से पहाड़ टल जाता है, पूर्ण में वह ताकत। और समस्त पुण्य कर्मों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान का श्रवण कीर्तन करना। एक तरफ सारी क्रियाएं हो और एक तरफ एक भगवान के नाम का उच्चारण, तो भगवान का नाम का उच्चारण सारे साधनों से भारी होगा, इतनी शक्ति है। किसी भी पुण्य कर्म से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक नाम अपराध है। आठवा नाम अपराध है ना, यज्ञ दान तप आदि के समान कह देना। एक बार कोई कृष्ण कहा तो एक बार कृष्ण बोलने से जितना पवित्र जीव होगा उतना ये सारे कर्म मिलकर के उसे पवित्र नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पुण्य श्रवण कीर्तन सबसे बड़ा पवित्रता का कारण है, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का श्रवण करना, स्मरण करना। और अन्य शक्ति होने पर यदि पैसा है, बुद्धि है, समय है, तो इन सब कर्मों को करते जाना चाहिए। यह भूमिका है भक्ति की, स्वयं में भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति की भूमिका है। जैसे लोटा दूध नहीं है परंतु दूध का क्यों भूमिका है, उसी पर दूध टिक सकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हमको लोटा की कोई जरूरत नहीं, हमारे पैकेट में दूध दो, झोला में दूध, दूध तो बह जाएगा। दूध को हम पैकेट में नहीं रख सकते। भक्ति पुण्यवानों के ही हृदय में टिकती है, पाप करने वालों के या दीन जनों की उपेक्षा करने वालों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं टिक पाता। जिसे पात्र होता है तो पात्र में और उस वस्तु में भेद होता है, दूध और लोटा में बहुत भेद है। यह नहीं कह सकते कि लोटा खुद दूध है, नहीं वो दूध नहीं है, लेकिन लोटा में ही दूध रहेगा, बर्तन में ही रहेगा। लोटा मतलब यहाँ प्लास्टिक का बर्तन आदि जो भी समझिए। इधर तो लोटा देखने को मिलेगा नहीं किसी दुकान में, तो भारत से आता होगा। लेकिन जो कंटेनर होता है दूध का या तेल का जो भी हो, बिना बर्तन को नहीं टिकेगा। तो ये पुण्य कर्म में भक्ति की भूमिका के समान आधार है। बारम्बार इस बात को कहा शुभ कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, तो भगवान की भक्ति में दृढ़ता आती है। रुक्मिणी जी के इस वाक्य से प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य यह प्रेरणा मिलेगी, तो हमको भी चाहिए कि हम भी कुछ पूर्त कर्म करें यथाशक्ति। यदि डायरेक्ट करने की शक्ति न हो तो दूसरे द्वारा करवाएं, कुआं खुदवाना, वृक्ष लगाना, सरोवर बनाना, और बहुत से कर्म हैं। आजकल वृंदावन में सरोवरों के मरम्मत की बहुत बात चल रही है और कई जगह हो रहा है, और बहुत सुंदर सुंदर सरोवर बने हुए हैं, तो उनका जीर्णोद्धार इनोवेशन बहुत कार्य हो रहा है। और बरसाने में परम पूज्य रमेश बाबा है, वो इसके फाउंडर आचार्य हैं, ब्रज के तीर्थों का उद्धार करने के लिए कई जगह उन्होंने किया भी है, और उनके पार्षद आते भी हैं अमेरिका में। इधर तो शुरू में जब वो आए अमेरिका बाबा के पार्षद चार, तो उनका यही उद्देश्य था कि यदि इधर से कुछ पैसा मिले तो ब्रज के तीर्थों का उद्धार किया जाएगा, और बहुत से किए हैं वो लोग, बहुत अच्छा कर्म हो रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से सब देखा है कितना अच्छा कर्म हो रहा है। इसके कारण भगवान की भक्ति में अभिनिवेश होता है। खैर ब्रज के सरोवरों की सेवा तो डायरेक्ट भक्ति है, तो कोई पुण्य कर्म मात्र नहीं है, डायरेक्ट भक्ति। तो रुक्मिणी जी इस क्रिटिकल मोमेंट पर, इस दुविधापूर्ण समय में अपने पुण्यों को दाव पर लगा रहे हैं कि यदि हमने पुण्य किया है और भगवान की आराधना किया है इन कर्मों से, तो श्री कृष्ण मेरा पाणी ग्रहण करें। और फिर कहते यदि भगवान कहना नहीं चैद्याय बंधु भी अर्पिताय हम तो एक ही मधुना करणीय, यदि भगवान कहें कि रुक्मिणी तुमको तो तुम्हारे पिताजी और भाई ये सब कह चुके हैं, अर्पित कर चुके हैं तुमको शिशुपाल के लिए, निश्चित हो चुका है दिन, तो इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। वास्तव में रुक्मिणी जी का विवाह बिल्कुल निश्चित हो गया था, कई क्रियाएं हो रही थी जैसे हल्दी लगाना, बहुत से मांगलिक कर्म होते हैं वो सब हो गए थे, हो रहे थे। उधर वर पक्ष में भी इसका वर्णन आएगा इसी प्रसंग में कि रुक्मिणी जी के पिताजी ब्राह्मणों से अपनी कन्या के मंगल के लिए बहुत कर्म करा रहे थे। उसमें एक कर्म होता है देवताओं की पूजा कराना कन्या के द्वारा, और फिर उस हल्दी लेपन किया जाता है, शरीर में हल्दी लगाते, वो भी एक उत्सव होता है, गांव में आज भी ये सब चलता है विधि पूर्वक। तो देवताओं की अर्चना, फिर दान दिलाना, बंधुओं को भोजन देना, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो महाराज भीष्म करा चुके थे, करा रहे थे, और उधर दमघोष भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए ब्राह्मणों को बुला करके सब मांगलिक कर्म करा रहे थे, तो उसका तो मंगल होगा नहीं लेकिन वो करा रहे थे सब प्रेम। इधर वधु कन्या का भी मांगलिक कर्म हो रहा था और वर का भी मांगलिक कर्म हो रहा था। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, श्री श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि ननु चैद्याय बंधु भी अर्पितायन त्वयि किम अधुना करणीय, जब तुमको पहले से ही बंधुओं ने अर्पित कर दिया है चैद्य के लिए, शिशुपाल के लिए, तो अब मैं क्या करूं। तो इस पर वे आगे का श्लोक लिखते हैं, स्वभाविनी तमजितोद्वहने विदर्भान गुप्तः समेत्य प्रीतना पतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्कान। ये रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं बता रही हूं। स्वभाविनी तुमज तो उद्वहन है, स्वभाविनी स्वभाविनी उद्वहन है, परसों के विवाह में, अर्थात मेरा विवाह परसों होने वाला है, तो आप उस समय से कुछ पहले आ जाइए। तुम अजित है, अजित आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, आप सबको परास्त कर सकते हो। श्री कृष्ण का एक नाम है अजित, कभी भी किसी भी विषय में श्री कृष्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता, किसी भी वस्तु में, सौंदर्य में, धन में, बल में, सब में वे सबसे अजेय हैं, आगे हैं। तो हे अजित, आप परसों होने वाले विवाह में पहले तो गुप्त रूप से आइए, अकेले अकेले आइए, और गुप्त का यहां अर्थ है छिप करके, छिप करके मतलब भेष बदल करके और कोई साथी लेकर के नहीं, आप आइए पहले और प्रवेश कीजिए नगर में इस तरह से, और बाद में अपने सेनापतियों के साथ हो करके, और तब चैद्य और शिशुपाल और जरासंध आदि की सेनाओं को तहस नहस कीजिए, उनको मारिए और हमें ले चलिए। रुक्मिणी जी स्वयं ही उपाय बता रही हैं कि आप इस तरह से आइए, ऐसे आइए। सेनापतियों को लाना है, बहुत बड़ी सेना नहीं लाना है, बहुत बड़ा जमात नहीं लाना है कि हल्ला हो जाए कि वो जादुओं की सेना आ रही है, तो ये सब तैयार हो जाएंगे। सेनापतिया में मुख्य मुख्य जैसे श्री बलराम जी हैं, अक्रूर जी और भी, तो ये सब लोग आवे। लेकिन ये संकेत से रुक्मिणी जी कह रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ है कि ये लोग आ करके कहीं बगीचे में शहर से थोड़ा दूर रुके, वो लोग रुके और उनका पता नहीं चलना चाहिए शहर में कि ये सेनापति लोग आए हैं द्वारका से, तो वे लोग उधर रहे और आप अकेले आइए। अकेले आकर के मेरा हरण कीजिए। तो मान लीजिए भगवान कहेंगे कि तुम्हारा हरण करने में तो फिर युद्ध होगा, तो इसी पर रुक्मिणी जी कहती हैं कि बाद में प्रतना पति भी परीत सेनापतियों के साथ घिर करके और जरासंध है और शिशुपाल आदि की सेनाओं को तहस नहस करके मुझे ले जाइए द्वारका। पहले वे इस बात से डर रही हैं कि यदि सेना आएगी, सेनापति लोग आएंगे द्वारका से, तो फिर शायद मेरा गिरजा भवन में जाना भी रुक सकता है, अब तो कर्फ्यू लग जाएगा, कोई कुछ काम नहीं हो सकता, चाहे विवाह भी बंद हो जाए उस दिन, है ना, ऐसा इनको डर है कहीं लड़ाई छिड़ गई, झगड़ा होने लगा तो विवाह आदि का मुहूर्त बाद में किया जा सकता है, तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए वे कहती हैं कि आप पहले गुप्त आइए, अकेले आइए, नगर में प्रवेश कीजिए, सेनापतियों को थोड़े दूर पर रख करके, और इसके बाद आप मेरा हरण कीजिए। यदि हरण करने में वे बाधा देते हैं तो तुरंत ही वो तो संकेत करने से सेनापति लोग आ जाएंगे, ज्यादा लोग, और उनके साथ मिल करके जरासंध की सेनाओं का मंथन करके नष्ट करके आप हमें ले जाइए द्वारका। इस तरह से रुक्मिणी जी उपाय बता रही है। अच्छा, इस पर भगवान मानो यह कहें, ये तो ठीक है, मैं शिशुपाल आदि का मथन तो कर सकता हूं, उनका वध कर सकता हूं, या उनकी शान तोड़ सकता हूं, पराजित कर सकता हूं, लेकिन तुम तो अंतःपुर में रहोगी, राजा के भीतरी भवन में जहां तुम्हारी मां रहेगी या स्त्रियां रहती हैं वहां रहोगी, तो वहां से यदि मैं तुम्हारा अपहरण करूंगा तो तुम्हारे बंधु बांधव विरोध करेंगे, फिर मेरा लोग विरोध करेंगे, तो उनका वध किए बिना मैं तुम्हारा हरण कैसे कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे किसी भी बंधु का मैं वध करूं, और बंधु में सबसे तुम्हारा बड़ा भाई वो तो सामने आएगा ही, और आएगा तो उस समय फिर वध करना पड़ेगा। इस विवाह के शुभ अवसर पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे भाई का वध किया जाए या तुम्हारे किसी स्वजन का वध किया जाए, और बिना वध किए अंतःपुर से तुमको निकालना बहुत कठिन। तो इस पर रुक्मिणी जी पत्र में ये छठा श्लोक कहती है। अंतः पुरांतर चरी मनिहत्य बंधु स्वामुद वहे कथमिति, यहां तक भगवान का वाक्य बोल रहे हैं कि हे प्रियतम, यदि आप यह पूछें कि अंतः पुरांतर चरी अंतःपुर में रहने वाली तुमको बंधुन अनिहत्य कथम उद्वह है, तुम्हारे बंधुओं की हत्या किए बिना मैं तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकता हूं, आखिर तो वहां खून खराबी होगी, उन्हें मारना पड़ेगा। यदि आप यह कहें तो प्रवदानी उपायम, मैं उपाय बता रही हूं, उपायम प्रवदानी, आप चिंता ना करें, हमारे बंधुओं में से किसी की हत्या नहीं करनी पड़ेगी। क्या उपाय है? पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेव यात्रा या कुलदेव यात्रा जस्यम बहिर नव बधुर गिरजा मुपेया, विवाह से
एक दिन पहले पूर्वे द्यु, पूर्व कहते पूर्व, द्यु कहते दिन, पूर्व दिन अर्थात विवाह से एक दिन पहले एक महती यात्रा होती है, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा होती है, महती यात्रा, कुलदेवी यात्रा उसको कहते हैं, कुलदेव यात्रा, हमारे कुल की देवी हैं गिरजा जी, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, कन्या को बीच में करके चारों तरफ पुलिस लगी रहेगी, बड़े बड़े वीर रहेंगे अपना अस्त्र लेकर के, और स्वजन परिजन सब चलते हैं, ब्राह्मणों की स्त्रियां चलती हैं, ब्राह्मण चलते हैं और भी स्त्रियां गीत गाती हैं, बहुत महती शब्द रुक्मिणी जी कह रहे हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। तो आप पता लगा लीजिएगा कि गांव से किस दिशा में गिरजा जी का मंदिर, अथवा उन्होंने लिखा होगा, अथवा यह बात प्रचलित होगी कि गांव से किस तरफ दुर्गा जी का मंदिर होता है, यह बताने की जरूरत नहीं, प्रायः पूर्व दिशा में मंदिर होता है। अभी हम लोगों ने गांव में देखा है, गांव से पूर्व दिशा में दुर्गा जी का मंदिर प्रायः होता है, तो यह बात भगवान अपने आप समझ गए होंगे। रुक्मिणी जी कहते हैं कि विवाह से एक दिन पहले बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है, जिसमें नववधु, जिसका विवाह होने वाला है वो नववधु, वही ही गांव से बाहर, शहर से बाहर गिरिजा उपेयात, गिरिजा जी के पास जाती है गिरिजा जी की पूजा करने के लिए और उनसे वर मांगने के लिए जाती है। आज भी नियम है गांव में, शहरों में भी भारतवर्ष में नियम है कि बच्ची जाती है माता दुर्गा की पूजा करने के लिए, तो उसका वैवाहिक जीवन सफल हो और उसके पति दीर्घजीवी हो, मंगलमय भविष्य हो, इसके लिए माता दुर्गा से प्रार्थना की जाती है। रामचरितमानस में भी वर्णन है, भगवान श्री राम जब बगीचा में गए थे फूल लेने के लिए, तो उसी समय सीता जी आई थी, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा की पूजा करने के लिए माँ ने भेजा था सीता जी को। तो यहाँ रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि हमारे कुल की एक रीति है, बहुत बड़ी राजकीय शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा में कन्या पैदल चलती है, सवारी से नहीं चलती, चूंकि माता गिरजा के घर जाना है तो सवारी से नहीं जाए, पैदल जाती है, और चरण में कोई जूता चप्पल नहीं लगाए, पूजा के लिए जाती है, इसीलिए ऐसे पैदल जाना होता है। तो रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि मैं अंतःपुर में उस समय नहीं रहूंगी और उस यात्रा का लगभग यह समय है, ऐसा समय है, इतने से इतने समय तक, एक घंटे या दो घंटे का जो भी परेड है वो है, वो मतलब इस तरह से बता दी खुलकर, इतने समय तक वो यात्रा चलेगी। और रुक्मिणी जी ने यह भी कहा पत्र में, ये सब बातें छिपी हुई हैं, गिरजा मुपेयात, यह शब्द बता रहा है कि जब मैं अपने अंतःपुर से घर से जाऊंगी गिरजा जी का पूजन करने के लिए, तो वहां तक तो निर्विघ्न जाने दीजिएगा, वहां तक हरण करने की कोई जरूरत नहीं, तो माता दुर्गा की पूजा कर लू मैं अच्छा से जो भी करना है, लौटते समय जब अपने घर लौटूंगी उसी समय बीच रास्ते में से आप अपने रथ पर बैठा कर चल दीजिएगा हमको, और यदि वे लोग लड़ाई करें तो फिर जादों को संकेत कर देना चाहिए कि तुम लोग उसी समय आ जाना है। पहले से ये सारी बातें पत्र में संगोपांग समझाई गई थी भगवान को। तो गिरजा जी के मंदिर से प्रत्यावर्तन के समय मेरा हरण कीजिएगा, तो इससे हमारे बंधु बांधव कोई नहीं मारे जाएंगे, तो बचे रहेंगे। यद्यपि उसके बाद भी रुक्मी प्रण किया, तो भगवान हरण कर लिए रुक्मिणी जी का, तब तो इधर तो सारे राजाओं में बहुत हल्का मच गया, हाहाकार मच गया, हाय है। वो लोग लगे कहने कि देखो जैसे सिंहों के बीच में कोई हरिण आ करके और उनका सिंह भाग ले जाए, वैसे यह जादू आया और ले गया है। पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, मारो, लौटाओ कन्या को, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक जाएगा। तो सब लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन जादवों ने रोक लिया तुरंत। भगवान तो रुक्मिणी जी को लेकर के चले गए कुछ दूर, और बलराम जी ये सब आकर के इनका सामना किए, बहुत लोगों को मारे, सेना भाग गई, कुछ लोग जान से भी मारे गए। बहुत बड़ी उदासी छा गई, बहुत बड़ी बड़ी सेना आई थी विवाह कराने के लिए, लेकिन कुछ करा नहीं पाए, उल्टे बहुत बड़ी हार हुई, मारे गए। तो शिशुपाल तो बेचारा चुपचाप, वो तो दुल्हा बन करके गया था विवाह। अब तो उसका तो पहले से ही कृष्ण से वैर था, और अब तो वो ये मानता था कि हमारी पत्नी को ले गया, ऐसा मानता था। ये उसकी मान्यता सरासर झूठी थी, गलत थी, लेकिन वो मानता था। तो सभा में और लोग तो उदास थे ही, लेकिन वो तो बेचारा रो रहा था। उसका विवाह निश्चित किया था जरासंध, तो जरासंध उसको समझाने लगा। ये भागवत में वर्णन है, ये कथा आएगी बाद में। जरासंध कहता है, शिशुपाल जी आप छोटी सी बात के लिए इतना शोक करने लगे। अरे उसके लिए छोटी बात थोड़े थी, वो तो हाहाकार करने लगा कि रुक्मिणी जैसी कन्या हमें नहीं मिली। और कन्या नहीं मिली इसका तो दुख था ही, कृष्ण ले गए और डबल दुख। उसको बहुत ज्यादा दुख था। तो अब कौन समझावे, तो मुखिया था उस विवाह का, बारात का, जरासंध समझाने लगा। शिशुपाल जी आप शोक छोड़िए, शोक मत कीजिए, आप ऐसा मत समझिए कि जादवों ने हरण कर लिया रुक्मिणी का, उन लोगों में क्या है, समय बलवान होता है, काल बलवान होता है, ये लिखा था कि रुक्मिणी का हरण हो जाएगा और जादू लोग कर लेंगे, इनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन काल बलवान है, शक्तिहीन में भी शक्ति भर देता है। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। और हम तो ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति न हो तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि आपके ललाट में रुक्मिणी से विवाह लिखा नहीं था, जादुओं में क्या है, जब लिखा नहीं था इसलिए वो लोग जीत गए, चाहे रुक्मिणी को ले गए, आप चिंता मत कीजिए। और इस विषय में देखिए, चिंता नहीं करने वालों में मैं ही एग्जाम्पल हूं। आपने हमारा नाम सुना ही है, सब जानते हैं आप, यही कृष्ण 17 बार हमको पराजित किया था मथुरा में, मैं दूसरे को क्या उदाहरण, लेकिन 18वीं बार मैं उसको मथुरा से भगा दिया, गुरण छोड़ हो गया, भाग गया था अपनी जन्मभूमि छोड़ कर। अरे ऐसा भाग रहा था, मैं पीछे से कह रहा था कि अरे मेरी शरण में हो जाओ, जान छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगा, लेकिन दोनों भाई बहुत डरे हुए भाग गए। 17 बार हारा हुआ व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा, आप केवल 1 बार में रोने लगे, रुकिए इतना साहस मत खोइए। इस तरह से समझा रहा है, तो ले कुछ भी समझाया, शिशुपाल का जो वैर भाव था वो तो 100 गुना बढ़ गया भगवान के प्रति, यहां से और ज्यादा दृढ़ हुआ वैर भाव। तो उसी सभा में, तब तो रुक्मिणी विवाह निश्चित किया था इधर से जबरदस्ती रुक्मिणी का, रुक्मिणी का हरण हो गया, तो भरी सभा में रुक्मिणी प्रतिज्ञा किया, यदि मैं कृष्ण का वध नहीं कर सका और अपने भगनी को, अपने बहन को यदि नहीं लौटा पाया, तो इस नगर में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा, आज से छूटा मेरा नगर। वही जन्म हुआ था, वहाँ का राजा था, लेकिन कहा कि इसमें प्रवेश नहीं करूँगा, कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा, अभी जा रहा हूँ कृष्ण का वध करके और अपनी बहन को लौटा लूंगा। लेकिन वो ऐसे बोल रहा था कि यदि कृष्ण का वध नहीं किया और रुक्मिणी को नहीं लौटा पाया तो मैं फिर इस नगर में नहीं रहूंगा, इसको छोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा करके गया, इसके बाद भगवान के साथ युद्ध करने लगा। कहता है कि अरे कृष्ण, जैसे गरुड़ का भाग कौवा ले जाए ऐसे तुम ले जा रहे हो रुक्मिणी को, इस तरह से बोलता है। भगवान बहुत गाली सहे, जल्दी उसको नहीं मारे, कोई एक्शन नहीं लियो, पीछे से गाली देता हुआ जा रहा था, गाली देता जा रहा था। तो भगवान ने सोचा कि साला है ही गाली दे कुछ। लेकिन बाद में भगवान उसे बांध लिए, बांध करके रथ पर चढ़ा लिए और उसका केस तलवार से काट दिए। बहुत दुख था, रुक्मिणी जी उससे रो रही थी, बाद में बलराम जी ने छुड़ा दिया उसको। ये सब कथा बाद में आएगी। तो रुक्मिणी जी ये उपाय बता रहे हैं कि अंतः पुरांतर चरिम अनिहत्य बंधु तामुद बहे कथमिति प्रमदाम उपाय। मैं उपाय बता रही हूँ, पूर्वे दूरस्थ महती कुलदेव यात्रा जस्याम बहिर नव बधुर गिरजा मुखेया। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया भगवान को कि ऐसे आइएगा, इस समय मेरा हरण कीजिएगा। इस पर भी यदि मान लीजिए भगवान कहें ननु किम अनेना अनर्थ कारिण निर्बंधेन चैद्यो अपि तावत प्रख्यात गुण कर्मा योग्य एवं वर इति तत्व। यदि भगवान कहें कि रुक्मिणी क्यों ऐसा हठ कर रही हो, ये तो अनर्थकारी हठ है, इसमें युद्ध होगा, बंधुओं में विरोध होगा आपस में, आखिर तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है, तो शिशुपाल भी तो एक बहुत प्रख्यात व्यक्ति है, राजा है और बड़ा व्यक्ति है। वास्तव में शिशुपाल बहुत बड़ा व्यक्ति था, कृष्ण से द्रोह करता था, वैर करता था, यही केवल उसमें दोष था, बाकी और लौकिक दृष्टि से वह बहुत बड़ा प्रख्यात व्यक्ति था, पर चूंकि भगवान का पार्षद था इसलिए भगवान के समान ही सुंदर था, वह राजा था सब तरह से। तो मानो भगवान कहें कि शिशुपाल भी प्रख्यात गुण कर्म वाले हैं और उनके साथ विवाह निश्चित हो ही गया है, तो क्यों हठ कर रही हो, क्यों मुझको जोत रही हो, युद्ध करना पड़ेगा, बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत लोगों की जान जा सकती है, तो यह जो निर्बंध है, हठ है, यह अनर्थकारी है, तो शिशुपाल के साथ विवाह कर लो, क्या हर्ज है। तब रुक्मिणी जी अंतिम श्लोक कहती है, जस्यां घृतं कज रजः स्नपनं महांतो वांशं तुमापतिरिवात्मतमोपहत्यै जर्ह्यं भुजाक्षन लभेय भवत् प्रसादं जह्यामसून व्रतकृशात् सतजन्मभिस्यात्। हे प्रभो, हे अंबुजाक्ष, हे कमलनयन, आप इतने महान हैं कि उमापति, उमा जी के पति भगवान शिव भी आपके चरणों की दासता की कामना करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, इतने महान आप, कहां आप और कहां शिशुपाल, तो कोई तुलना की बात ही नहीं। मैं कभी स्वप्न में सोच ही नहीं सकती कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूंगी। जस्यांग पंकज रजः स्नपनम, जिनके चरण कमल के रज में स्नान करने की वांछंती उमापति रिवा, उमापति जैसे महान पुरुष भी आपके चरण कमल के रज में स्नान करना चाहते। चरण कमल के रज में स्नान का अर्थ है आपकी दासता चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। उमापति इवा, इस संसार में भगवान के बाद यदि कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है तो वो है भगवान शिव, उसके बाद ही कोई है, ब्रह्मा जी चाहे और जो भी, शिव जी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा चाहते हैं। वांछन्ते उमापति इवा, क्या करना चाहते हैं, अंघ्रि पंकज रज स्नपनम महांत। उमापति भगवान शिव जैसे महान पुरुष लोग आपके चरण कमल के रज में स्नान करना चाहते हैं। किस लिए? आत्म तमोपहत्य, अपने मन के अंधकार को अज्ञान को मिटाने के लिए कि आप में उनकी नित्य भक्ति बनी रहे, आप ही उनके जीवन के सब कुछ रहें, तत्व ज्ञान उन्हें पूरा भरा पड़ा रहे कि आप ही सब कुछ हैं, इसके लिए वे आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो जिनकी कामना, जिनकी सेवकाई स्वयं भगवान शिव चाहते हैं और शिव जी जैसे और भी जितने महान पुरुष हैं सभी जिनके चरण कमलों की सेवा चाहते हैं, ऐसे आपकी मैं दासी बनने चाहती हूँ। और यदि भगवान कहें कि यदि नहीं बन पाओ, यदि मेरा चरण कमल नहीं मिलेगा, तब कहती है कि हे अम्बुजाक्ष, जरही भवत प्रसादम न लभेया, यदि मैं आपकी कृपा को नहीं पा सकूंगी, कदाचित मैं आपकी अगर पत्नी नहीं बन पाई, आपके साथ विवाह नहीं हो पाया, तो मैं जहिया मसून, मैं प्राणों को निश्चित त्यागूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, लेकिन विवाह दूसरे से नहीं कर सकती। जहिया मसून व्रत कृषा छतजन में भी से, वैसे व्रत और उपवास करने के कारण मेरा शरीर तो पहले से ही दुर्बल हो चुका है, मेरे प्राण ऐसे भी बहुत चिंता से दुर्बल हो गए, क्रिश हो गए, मेरा शरीर क्रिश हो गया। तो यदि इस पर भी आप नहीं आएंगे और आपके चरण कमलों की दासी बनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा, तो मैं निश्चित असुन जहिया, मैं प्राण त्याग दूंगी। बस यही पत्र का अंतिम लाइन था, और आपकी दासी रुक्मिणी, भवतो दासी रुक्मिणी संस्कृत में लिखी है, आपकी दासी रुक्मिणी। बताइए इस बात को सुन करके भगवान कैसे रुक सकते थे, क्यों नहीं वे आ जाए? तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। तो भगवान इस पर भी पूछते हैं, तो इससे क्या होगा, मान लो तुम शरीर भी छोड़ देती हो तब? तो कहते सतजन्म भी स्यात, मैं बारंबार जन्म लूंगी और शरीर छोड़ूंगी, भले सैकड़ों जन्म बीत जाए, हजारों लाखों जन्म बीत जाए, लेकिन जब बनूंगी तो आपकी दासी बनूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी, मैं अन्य किसी की नहीं बन सकती, केवल जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, और यदि आप नहीं मिले तो फिर शरीर छोड़ूंगी। इस तरह सैकड़ों बार, यहाँ सत शब्द का तात्पर्य अनंत बार, हजारों लाखों बार मैं जन्म लूंगी, भले ही 100 जन्मों में लाखों जन्मों में हो, लेकिन वही प्रसाद मुझे मिलेगा, तब मुझे सुख होगा, मैं जी नहीं सकती हूँ। बस यही अंतिम शब्द था जो भगवान के हृदय को बिल्कुल झकझोर दिया। वैसे तो पहले से ही वे चाहते थे कि मैं रुक्मिणी का हरण करूंगा, लेकिन रुक्मिणी जी के पत्र ने भगवान के हृदय को बिल्कुल वश में कर लिया। और इतना कह करके वो ब्राह्मण बोले, पत्र पढ़ करके ब्राह्मण उवाच, इत्ते गुह्य संदेशा जदु देव मया हर्ता विमृश्य कर्तुम जच्चात्र क्रियताम तदनंतरम। हे जदु देव, हे जादवों में श्रेष्ठ, यह गुह्य संदेश है, गोपनीय रहस्य है, जो मेरे द्वारा यहाँ लाया गया है, आप इस पर विचार कर लीजिए, और विचार करने के बाद जो करना उचित हो क्रियताम तदनंतरम, उसको शीघ्र कीजिए, जो भी आप करना उचित समझते हैं उसको शीघ्र कीजिए। तो ब्राह्मण के कहने का अर्थ यह था कि आप अवश्य चलिए कुंडिनपुर और रुक्मिणी का हरण कीजिए, उसके साथ विवाह कीजिए, लेकिन अपनी ओर से ब्राह्मण कह रहे हैं कि उस अनंतरम, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए समय का, जथा शीघ्र आप चलिए, अन्यथा रुक्मिणी प्राण त्याग देगी, जीवित नहीं रह पाएगी। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैदर्भ्यास तु संदेशम निशम्य जदुनंदन प्रगृह्य पाणिना पाणी प्रहसानिदम ब्रवीत। वो ब्राह्मण बहुत चिंता में थे कि रुक्मिणी शरीर छोड़ देगी यदि भगवान नहीं पहुंचेंगे तो वैदर्भी के रुक्मिणी के इस संदेश को सुनकर जदुनंदन भगवान हंसने लगे और ब्राह्मण के पाणी को अपने पाणी से पकड़े। प्रगृह पाणी ना पाणी, ब्राह्मण के हाथ को पकड़े अपने हाथ से, और इसके द्वारा भगवान संकेत कर रहे हैं कि मैं रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण करूंगा। और हंसते हुए प्रसन्न चित से इस प्रकार बोले, श्री भगवान वाच तथा हम अपि तच्चित्त निद्रां च न लभे निशि वेदा हम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्बाहो निवारितः। भगवान के मुख से सबसे पहले यही निकला, तथा अहम अपि। पूरे पत्र की बात को याद करके भगवान कहे, जिस प्रकार रुक्मिणी मुझे प्राप्त करने के लिए विकल है और मेरी प्राप्ति के बिना उसे कोई सुख नहीं है, उसी तरह से मैं भी रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए विकल हूं और उसके बिना मुझे कोई सुख नहीं। कि भगवान ने कहा तथा अहम अपि, पहले पहल भगवान के मुखारविंद से शब्द निकला तथा अहम अपि, मैं भी। अर्थात हे विप्रदेव, आप ऐसा मत सोचिए कि रुक्मिणी मुझे चाहती है, जिस तरह रुक्मिणी मुझे चाहती है उसी तरह से मैं उसे चाहता हूं। भगवान तो प्रेम के वश में है, तो इस तरह से जैसे रुक्मिणी जी ने अपने उत्कंठा को व्यक्त किया तो भगवान ने इस सारी उत्कंठाओं को आत्मसात करते हुए कहा कि तथा अहम अपि, मैं भी तच्चित्त, मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा हुआ है। और हे ब्राह्मण देव, मैं तो रात में सो नहीं पाता, निद्रां च न लभे निश, मैं इसी चिंता में रात में सो नहीं पाता। दिन में सोने की तो बात ही नहीं है, भगवान निशी कह रहे कि रात में भी नहीं सो पाता, क्योंकि रात सोने का समय है, लेकिन भगवान रात में रुक्मिणी के विषय में विचार किया करते थे। जब रुक्मिणी जी भगवान का चिंतन करके रोती थी तो भगवान को नींद नहीं आती थी। इस तरह भगवान प्रेम का प्रतिदान करते हैं। कोई व्यक्ति यदि कृष्ण का भजन कर रहा है, याद कर रहा है, उपवास कर रहा है, एकादशी को कष्ट सह रहा है, तो निश्चित समझिए भगवान उसकी याद करते हैं और एक एक क्रियाओं को समझते हैं और समय पर प्रतिदान करते हैं। कभी किसी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ, भगवान इसको कुछ मान रहे हैं कि नहीं, कोई सब ध्यान में है कि नहीं। कभी कभी ऐसी शंका हो सकती है, मैं भगवान के लिए यह छोड़ा, यह किया, वह किया, तो इसको भी अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। कितना अप्रिशिएट भगवान करते हैं, कहते हैं कि मैं तो रात में सो नहीं पाता। तच्चित्त तथा अहम अपि तच्चित्त, भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण देव अब बस यही समझिए, मैं रुक्मिणी जैसा पत्र नहीं लिखा, चाहे और कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरा चित्त उसी तरह रुक्मिणी में लगा हुआ है जैसे रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा हुआ है। तथा अहम अपि तच्चित्त निद्रां च न लभे निशि, और इसके द्वारा यह भी कह रहे हैं कि जैसे रुक्मिणी सो नहीं पाती है, रात दिन मेरा चिंतन करती है, तो उसी तरह से मैं भी नहीं सो पाता। और मैं यह भी जानता हूँ, वेद अहम अहम वेद, मैं जानता हूँ कि रुक्मिणा द्वेषान ममोद बाहो निवारितः, रुक्मी ने द्वेष के कारण मेरा विवाह रोक दिया। कोई अयोग्यता देखकर नहीं, रुक्मी का केवल कृष्ण से द्वेष था इसलिए विवाह रोक दिया था। अरे कृष्ण में कोई दोष देख करके रोका होता कि ये दोष है वो दोष है, ये ज्योतिष के अनुसार ये गणना नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, कुछ कहा कुछ नहीं, बस कृष्ण के साथ करना ही नहीं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रुक्मिणा रुक्मी के द्वारा द्वेषत मम दुवाहो निवारित, मेरा विवाह रोक दिया जाए। तो आप चिंता मत कीजिए, ताम आनिश्य उन्मथ्य राजन न्याप सदान मृदय मत परा मनवद्यांग यद सुग्नि सिखामि वा। ताम आनिश्य भगवान एक श्लोक बोलने के बाद फिर कहा ताम आनिश्य मैं इसको लाऊंगा, ताम रुक्मिणी आनिश्य आनूंगा लाऊंगा। तो ब्राह्मण पूछे कैसे लाएंगे, मान लीजिए कैसे लाएंगे, तो कहते हैं मैं राजा नामधारी उन नीचे लोगों के बीच से वैसे ही रुक्मिणी को लाऊंगा जैसे ईंधन के बीच में अग्नि की लपट निकलती है। तो उदाहरण ऐसे दे रहे हैं कि बहुत बड़ा ईंधन हो, लकड़ी हो, और उसमें आग उत्पन्न होती है तो वो आग ही ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। तो रुक्मिणी के कारण उन राजाओं को मैं इस तरह परास्त करके ध्वस्त करके रुक्मिणी को लाऊंगा। ये धसो अग्नि शिखा में वह, ये धसा का अर्थ ईंधन, लकड़ियों में से जैसे अग्नि शिखा निकलती है लकड़ी को ही खा करके जला करके, तो उस तरह से उन राजाओं को मैं परास्त करके अभिभूत करके और वहां से उनके बीच से लाऊंगा। अग्नि कोई उत्पन्न करता है तो ईंधनों से उत्पन्न करता है, तो भगवान के सामने ये ईंधन जैसे सड़ी हुई लकड़ी जैसे हैं, जरा समझा दी वो, उनको कोई युद्ध थोड़े करना है। युद्ध कोई व्यक्ति करता है अपने समान बल वाले से, इनके साथ भगवान क्या युद्ध करेंगे। भगवान कहते हैं मैं लाऊंगा उसको, आप चिंता मत कीजिए। और रुक्मिणी कैसी है, मत पराम अनवद्यांगी, रुक्मिणी जी को ये चिंता हो रही थी आगे ये कथा आएगी, जब ब्राह्मण के आने में देर हुई तो रुक्मिणी जी सोचती हैं कि अवश्य ही भगवान मुझमें कोई दोष देख करके विवाह नहीं करना चाहते हैं हमसे, ये तो भक्तों में सहज दैन रहता है, इसलिए रुक्मिणी जी भी सर्वगुण संपन्न है, कोई दोष नहीं है, भगवान की प्रेयसी है तो भगवान के समान ही है, परंतु भगवान के आने में विलंब हो रहा है, ब्राह्मण भी नहीं लौटे संदेश लेकर के, तो रुक्मिणी जी यही सोच रही हैं कि मुझ पर दुर्गा जी प्रसन्न नहीं है, भगवान शिव प्रसन्न नहीं है, और अवश्य प्रियतम श्याम सुंदर हमें कोई कमी देख करके वे विवाह नहीं करना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। तो रुक्मिणी को यह संदेश देने के लिए कि नहीं नहीं मेरे मन में ऐसा नहीं है, रुक्मिणी में कोई दोष है ही नहीं, इस बात को कहने के लिए भगवान कह रहे हैं मत पराम अनवद्यांगी, रुक्मिणी को मैं जानता हूं कि वह पूर्णतः मुझे समर्पित है, मेरी प्रेयसी है, मुझे प्रेम करती है, और अनवद्यांगी और वह निर्दोष है, उसके सारे शरीर परम सुंदर, सारे अंग परम सुंदर हैं, कोई दोष नहीं है, तो मैं उसको लाऊंगा अग्नि शिखा के तरह ईंधनों के बीच से। और उन राजाओं को भगवान कह रहे हैं कि राजन न्यापसदान, अपसद का अर्थ होता है संज्ञा, केवल उनकी संज्ञा भर है कि राजा है, राजा उसे है नहीं, राजा का गुण नहीं है, तो उन दुष्ट राजाओं को मत करके उन्हें बुरी तरह से पराजित करके मैं रुक्मिणी को लाऊंगा। श्री शुका उवाच उद्वाहार्थं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामासु दारुकेत्याः सारथिं। तो भगवान इस बात को पूरा तरह समझ गए कि विवाह का यह लग्न है, इस समय विवाह होगा, बहुत जल्दी होने वाला है, तो अतः भगवान ने तुरंत ही दारुक को कहा, अपने सारथी को, रथः संयुज्यतामासु दारुक इत्याह सारथिं, भगवान ने कहा दारुक रथ संयुज्यतम रथ तैयार करो। भगवान कुंडिनपुर जाने के पहले बलराम जी से भी कोई अनुमति नहीं ले रहे, कि भगवान को क्या डर है किसी के पास जाने में, दिखाया जा रहा है श्री कृष्ण का शौर्य और निर्भय।